लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे संकट में फंसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि टूटे हुए परिवार क्षमा के माध्यम से अपने घावों का उपचार खोज सकें और अपने बीच व्याप्त मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के उपहारों को फिर से खोजने में सक्षम बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंतोनियो गुटेरेस ने कहा है कि महिला अधिकारों की दिशा में सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई है। पहले से कहीं अधिक संख्या में लड़कियां स्कूलों में हैं, महिलाओं को सत्ता में प्रतिनिधित्व मिला है, मगर अब भी हर 10 मिनट में एक महिला की मौत अपने संगी साथी या पारिवारिक सदस्य की वजह से हो रही है। मौजूदा रफ्तार में महिलाओं के लिए अत्यधिक निर्धनता का उन्मूलन करने में 130 वर्ष का समय लगेगा। इसके मद्देनजर उन्होंने समान अधिकार सुनिश्चित किए जाने पर बल देते हुए ध्यान दिलाया कि जब महिलाएं व लड़कियां आगे बढ़ती हैं, तो समाज की भी प्रगति होती है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है सभी महिलाओं व लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, मजबूती। शीर्षतम यूएन अधिकारी अंतोनियो गुटेरेस ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क मुख्यालय में महासभा हॉल में शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब समान अवसरों के दरवाजे महिलाओं व लड़कियों के लिए खुलते हैं, तो इसमें हर किसी की जीत होती है। समानतापूर्ण समाज कहीं अधिक समृद्ध व शांतिपूर्ण है और टिकाऊ विकास की बुनियाद है। यूएन विमेन की कार्यकारी निदेशक सीमा बहाउस ने महिला मजबूती की पुकार इन शब्दों में लगाई।
रियल सॉल्यूशंस रिक्वायर दैट वुमेन बी एट द हार्ट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग।
वास्तविक समाधानों के लिए आवश्यक है कि महिलाएं निर्णय निर्माण के केंद्र में रहें। अफगानिस्तान से लेकर DRC तक, फलस्तीन, गाजा से लेकर म्यांमार, सूडान और उनसे भी परे तमाम क्षेत्रों में महिलाओं को टकरावों, विस्थापन, कठिनाइयों व हानियों का बोझ सहन करना पड़ता है। इसके बावजूद हम ये भी जानते हैं कि जब महिलाओं को शांति वार्ताओं में जगह मिलती है, तो शांति अधिक व्यापक, अधिक समावेशी और अधिक टिकाऊ होती है। यूएन विमेन की कार्यकारी निदेशक सीमा बहाउस के शब्द। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि जब महिलाओं की आवाज समान रूप से सुनी जाती है, तो समाज खुशहाल होते हैं, मगर हम यह सब पहले से जानते हैं और अब समय है कार्रवाई करने का।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने आगाह किया है कि गाजा पट्टी में मानवीय सहायता काफिलों का प्रवेश इसराइल की एकतरफा ढंग से लगाई गई रोक से स्थानीय आबादी में भय व्याप्त है कि हिंसा फिर से शुरू हो सकती है और इससे जीवन रक्षक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खतरा पैदा होगा। साथ ही पश्चिमोत्तर सीरिया में विभिन्न शिविरों और विस्थापित केंद्रों में रह रहे करीब 10 लाख हताश नागरिक अगले वर्ष तक अपने घर लौटना चाहते हैं, जिससे एक नए मानवीय संकट की आशंका उपज रही है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
यूएन एजेंसी ने ध्यान दिलाया कि 19 जनवरी को युद्ध विराम का पहला चरण शुरू होने के बाद से गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता सामग्री पहुंचाई गई है। इसके बावजूद पिछले 15 महीने से जारी युद्ध व उससे हुई तबाही से हालात बेहद गंभीर हैं और विशाल आवश्यकताएं बरकरार हैं। हिंसक युद्ध के दौरान इसराइली सैन्य बलों की तरफ से सहायता आपूर्ति काफिलों को अक्सर गाजा जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी या फिर उनके रास्ते में अवरोध खड़े किए जाते थे। यूएन सहायता कर्मियों ने सचेत किया कि मगर अब तक हुई प्रगति पर इसराइली पाबंदी से पानी फिर जाने का जोखिम है। उधर सीरिया के पश्चिमोत्तर इलाके में विभिन्न शिविरों और विस्थापित केंद्रों में रह रहे करीब 10 लाख हताश लोग अगले वर्ष तक अपने घर वापस लौटना चाहते हैं, जिससे एक नए मानवीय संकट की आशंका उपज रही है। घर वापस लौटने वाले लोगों को आवास, रोजगार, स्कूलों, बिजली व पेयजल की आवश्यकता होगी, मगर 14 वर्षों तक हिंसक टकराव से पीड़ित रहे देश में इन सेवाओं का अभाव है।
अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि सिंथेटिक ड्रग्स वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों के व्यापार को तेजी से बदल रही है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है और अवैध बाजारों को नया आकार मिल रहा है। अवैध सिंथेटिक ड्रग्स उपयोग का तेजी से विस्तार होना मानव जाति के लिए संभावित रूप से विनाशकारी परिणामों के साथ एक प्रमुख वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रशासित बोर्ड ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार पौधों पर आधारित ड्रग्स के विपरीत सिंथेटिक मादक पदार्थ बड़े पैमाने पर कहीं भी बनाए जा सकते हैं, इसके लिए खेती की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से तस्करों के लिए इनका उत्पादन और वितरण करना आसान और सस्ता हो जाता है। फेंटेनिल और नाइट्रोजन जैसे शक्तिशाली ड्रग्स के वजूद में आने से हालात और भी खराब हो गए हैं। इससे बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। इन मादक पदार्थों की छोटी खुराक भी शक्तिशाली साबित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नियंत्रण बोर्ड ने आगाह किया है कि अवैध सिंथेटिक ड्रग्स उद्योग का तेजी से विस्तार होना मानवता के लिए विनाशकारी नतीजों की वजह बन सकता है। आपराधिक समूह कानूनी एजेंसियों से बचने के लिए अपने तौर तरीकों में निरंतर बदलाव ला रहे हैं। वे कानूनी खामियों का फायदा उठाकर नए सिंथेटिक फॉर्मूले विकसित करते हैं और ड्रग्स के उत्पादन के लिए वैकल्पिक रसायन खोजने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। ड्रोन और डाक के जरिए ये सामान पते पर पहुंचाए जा रहे हैं। तस्करी के नए तरीकों से इन ड्रग्स का पता लगाना, उन्हें जब्त करना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ तो सिंथेटिक ड्रग्स की अवैध बाजारों में भरमार है, वहीं कम और मध्यम आय वाले देशों में लाखों लोगों के लिए अब भी दर्द निवारक दवाएं उपलब्ध नहीं है। इसके मद्देनजर INCB ने सरकारों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, डेटा साझा करने के तरीकों में सुधार लाने और ड्रग्स की रोकथाम और उपचार सेवाओं का विस्तार करने का आग्रह किया है।
संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी कार्यालय ने चेतावनी जारी की है कि पिछले कई दशकों से हिंसक टकराव, निर्धनता, जलवायु प्रभावों और सुरक्षा खतरों से जूझ रहे अफगानिस्तान में इस वर्ष की पहली तिमाही के दौरान करीब 1.5 करोड़ लोगों के खाद्य असुरक्षा के ऊंचे स्तर से पीड़ित होने की आशंका है। UN कार्यालय ने चिंता जताई है कि देश के समक्ष एक विशाल मानवीय संकट मौजूद है, जिससे महिलाओं व लड़कियों के लिए हालात विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
अफगानिस्तान दुनिया भर में संकटग्रस्त देशों में जरूरतमंदों की संख्या के नजरिए से सूडान के बाद दूसरे स्थान पर है। सूडान में लगभग 3 करोड़ लोगों को सहायता व संरक्षण की दरकार है। अफगानिस्तान की सत्ता पर अगस्त 2021 में तालिबान का नियंत्रण स्थापित होने के बाद देश में मानवाधिकारों के लिए संकट उपजा है और महिलाओं के लिए स्थिति विशेष रूप से खराब हुई है। खाद्य सुरक्षा व कुपोषण का स्तर बहुत खराब है। एक विश्लेषण के अनुसार इस वर्ष की पहली तिमाही के दौरान करीब 1.5 करोड़ लोग, यानी हर 3 में से एक अफगान नागरिक, खाद्य असुरक्षा के ऊंचे स्तर से पीड़ित है। 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 35 लाख बच्चों, 10 लाख से अधिक गर्भवती व स्तनपान करा रही महिलाओं के जल्द कुपोषण के शिकार होने का जोखिम है। देश के कई इलाकों में विस्फोटक सामग्री फैली हुई है, जो कि स्थानीय आबादी के लिए एक जानलेवा खतरा है। इन हालात में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने देश में अपनी उपस्थिति बनाए रखी है और जरूरतमंदों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं व सहायता सुनिश्चित की है। इस बीच केंद्रीय आपात प्रतिक्रिया कोष ने अफगानिस्तान में संकट से निपटने के लिए 1.9 करोड़ डॉलर की राशि आवंटित की है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
कृपा वरदान अनुग्रह दो, ज्योतिर्मय मुझे कर दो, ज्योतिर्मय मुझे कर दो, कृपा वरदान अनुग्रह दो,
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। रोम के जमेली अस्पताल के चिकित्सा कर्मचारियों के साथ संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार को अपने परमाधीक्षक काल की 12वीं वर्षगांठ मनाई तथा टेलीविजन के माध्यम से रोमन कुरिया की वार्षिक आध्यात्मिक साधना में भी भाग लिया। संत पापा फ्रांसिस के परमाधीक्षक काल के 12 वर्ष पूरे होने के दिन गुरुवार शाम को वेटिकन स्थित परमधर्म पीठीय प्रेस कार्यालय ने संत पापा की स्वास्थ्य स्थिति पर संवाददाताओं को जानकारी दी। प्रेस ने बताया कि दोपहर को जमेली अस्पताल का चिकित्सा स्टाफ संत पापा के कक्ष में मोमबत्तियों वाला एक केक लेकर पहुंचा। प्रेस की विज्ञप्ति में यह भी बताया गया कि वेटिकन स्थित संत पापा पॉल षष्ठम भवन में रोमी परमधर्म पीठीय कार्यालय के धर्माधिकारियों के लिए जारी आध्यात्मिक साधना में भी गुरुवार को संत पापा फ्रांसिस ने वीडियो लिंक के माध्यम से भाग लिया। चिकित्सा बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को उन्होंने श्वसन चिकित्सा भी पुनः शुरू की। वे रात में गैर आक्रामक यांत्रिक वेंटिलेशन और दिन के दौरान नाक के नलिकाओं के साथ उच्च प्रवाह ऑक्सीजनेशन बारी बारी से लेते रहते हैं। उनकी नैदानिक स्थिति जटिल अवस्था में स्थिर बनी हुई है। इसी बीच शुक्रवार प्रातः वेटिकन प्रेस ने बताया कि संत पापा फ्रांसिस ने एक विश्रामदायक रात व्यतीत की। शुक्रवार शाम को एक नया मेडिकल बुलेटिन आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि संत पापा फ्रांसिस को द्विपक्षीय निमोनिया के इलाज के लिए 14 फरवरी को रोम के जमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वेटिकन के संत पापा पॉल षष्ठम भवन में इन दिनों जारी आध्यात्मिक साधना के अवसर पर उपदेशक फादर रोबर्टो पासोलिनी ने अनंत जीवन में आशा को कभी न खोने का संदेश दिया। वेटिकन स्थित परम धर्म पीठीय रोमी कार्यालयों में सेवारत धर्माधिकारियों को संबोधित कर फादर पासोलिनी ने कहा कि अनंत जीवन में आशा जीवन की कठिनाइयों से उभरने तथा चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। उन्होंने कहा, भौतिक रूप से मानवता गिरावट से चिन्हित है, लेकिन एक आंतरिक नवीनीकरण भी है जो दिन प्रतिदिन हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी विलीन होता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में उसकी नियति महान है। ईश्वर ने हमें पुनरुत्थान के लिए बनाया है और यह कोई काल्पनिक स्वप्न नहीं है, बल्कि पूर्णता की ओर बुलाए गए अस्तित्व का एक स्वाभाविक तर्क है। फादर पासोलिनी ने कहा कि ख्रीस्त के क्रूस और पुनरुत्थान के रहस्य में प्रभु ईश्वर प्रेम की अपनी योजना पूर्णता तक ले गए। उन्होंने कहा, क्रूस की स्पष्ट हार वास्तव में एक ऐसे पिता का रहस्योद्घाटन है जो अपनी संतानों का परित्याग नहीं करते। अस्तु यह स्पष्ट है कि हमारा जीवन संयोग पर नहीं छोड़ा गया है, बल्कि यह दत्तक ग्रहण और मुक्ति की परियोजना का हिस्सा है जो हमें अनंत काल के लिए ईश्वर की प्रिय संतान बनाती है। उन्होंने कहा कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, खुशियां, दुख, जीत और असफलताएं, वह सब एक सतत परिवर्तन का हिस्सा है, एक बीज के समान जो मरकर नया जीवन उत्पन्न करता है। अतः हमारी नियति, भले ही हम मृत्यु की दहलीज पार कर लें, एक नए और गौरवशाली जीवन के प्रति लक्षित है। रोम के जमेली अस्पताल में बीमार चल रहे संत पापा फ्रांसिस और उनकी धर्म शिक्षाओं पर वेटिकन रेडियो के संपादकीय विभाग के निर्देशक अंद्रिया तोर्नियली ने चिंतन करते हुए कहा कि इस समय संत पापा जिस व्यथा से गुजर रहे हैं, बेशक वह उनके परमाधीक्षक काल की 12वीं वर्षगांठ को असाधारण बना देता है। उन्होंने याद किया कि बीते वर्ष ही संत पापा फ्रांसिस ने अपनी सबसे लंबी अंतर महाद्वीपीय यात्रा पूरी कर इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते और सिंगापुर का दौरा किया, विश्व धर्माधीक्षित धर्म सभा का समापन किया और जयंती वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में पवित्र द्वार का उद्घाटन किया और अब वे इस नाजुक क्षण से गुजर रहे हैं। संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी बीमारों के बीच बीमार हैं। दुनिया भर के इतने सारे लोगों की प्रार्थनाओं के साथ वे भी शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे जिन्होंने इन 12 वर्षों में कभी भी किसी सभा, धर्म शिक्षा या देवदूत प्रार्थना का समापन इन शब्दों के बिना नहीं किया कि कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना न भूलें, आज उन अनेक विश्वासियों और गैर विश्वासियों का आलिंगन महसूस कर रहे हैं जो उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि अब कलीसिया की प्रकृति और रोम के धर्माध्यक्ष के मिशन पर विचार करने का समय है, जो एक बहुराष्ट्रीय निगम के महाप्रबंधक से बहुत अलग है। उन्होंने कहा कि 12 साल पहले तत्कालीन कार्डिनल बेरगोलियो ने हेनरी दे लुबेक की राय को उद्धृत कर कहा था कि कलीसिया द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी बुराई आध्यात्मिक सांसारिकता है। यह एक ऐसा खतरा है जो कलीसिया को यह विश्वास कराता है कि उसके पास अपना प्रकाश है, जो अपनी ताकत, अपनी रणनीतियों, अपनी दक्षता पर निर्भर करता है, और इस प्रकार मिस्टेरियम लूने नहीं रह जाता है, अर्थात अब दूसरे के प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करता, अब केवल उसी की कृपा से नहीं जीता और कार्य करता है जिसने कहा था, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। संत पापा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि संत पापा की आवाज युद्ध नहीं बल्कि शांति, उत्पीड़न नहीं बल्कि संवाद, उदासीनता नहीं बल्कि करुणा की याचना करती है। संत पापा फ्रांसिस की परमाधीक्षी नियुक्ति की 12वीं वर्षगांठ पर गुरुवार को वेटिकन में 40-कालीन आध्यात्मिक साधना में शामिल परम धर्मपीठीय धर्माधिकारियों ने आशा व्यक्त की कि प्रभु के शिष्य बनने, सुसमाचार के साक्षी बनने और ईश्वर के राज्य के निर्माता बनने की इच्छा सभी में बढ़े। वेटिकन स्थित संत पापा पॉल षष्ठम भवन में जारी आध्यात्मिक साधना के दौरान गुरुवार अपरान रोमी कार्यालयों के परम धर्मपीठीय धर्माधिकारियों ने संत पापा फ्रांसिस के लिए रोजरी विनती का पाठ किया तथा यह मंगल याचना की कि संत पापा फ्रांसिस द्वारा दिया गया भाईचारे वाला संदेश जन जन में फैल जाए। धर्माधिकारियों की ओर से दिव्य भक्ति और संस्कारों संबंधी परम धर्मपीठीय धर्म संघ के उपाध्यक्ष मान्यवर विक्टोरियो फ्रांचेस्को वियोला ने संत पापा फ्रांसिस और उनके प्रेरित मिशन के प्रति अपनी कृतज्ञता और पुत्रवत स्नेह व्यक्त किया। संत पापा फ्रांसिस के चुनाव के क्षण को खुशी के साथ उन्होंने याद किया जब खचाखच भरा हुआ संत पेत्रुस महागिरजाघर का प्रांगण रोम के नए धर्माध्यक्ष और विश्वव्यापी कैथलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष के आशीर्वाद का खुशी से स्वागत कर रहा था। उन्होंने याद किया कि आज बीमारी की परीक्षा में उसी स्थान से, जैसे कि विश्व के कई अन्य भागों से, ईश प्रजा की प्रार्थना निरंतर उठती है जिसमें हम भी एक प्राण होकर शामिल होते हैं। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।